तो भगवान का नाम हम जितना लाउडली उच्चारण करते हैं और शुद्ध होते हैं, उससे ही अधिक हम शुद्ध होते हैं जब हम वैष्णव के नामों का उच्चारण करते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये ग्रंथ है जिसकी रचना नरहरि चक्रवर्ती ने की है, और उस ग्रंथ का नाम है नामामृत समुद्र। नाम अमृत समुद्र, उस समुद्र है तो उस विशाल होगा, तो वह हजारों वैष्णव के नाम हैं। वह भगवान के नाम नहीं है, उस पूरा ग्रंथ में किसके नाम है? भक्तों के नाम है। तो जिस प्रकार से भगवान भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करके आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार से कृष्ण भी हर रोज अपने भक्तों के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। आदि पुराण में वो लीला आती है कि नारद जी जाते हैं द्वारका कृष्ण को देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है वहाँ। तो एक दिन पहुंचे तो भगवान का जो अपना अंतपुर है जहाँ रुक्मिणी के साथ कृष्ण बैठते हैं उठते हैं रहते हैं, तो वहाँ देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था, थोड़ा हल्का सा दिखाई दे रहा था और आवाजें आ रही थी। क्या आवाजें आ रही थी अंतपुर से? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या लाउडली। और दूसरा आवाज आ रहा था अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अभी रुक्मिणी के महल में अंदर अंतपुर में जहाँ केवल कृष्ण रुक्मिणी के साथ रहते हैं बैठते हैं, तो वहाँ ये नारद बेचारे गए ढूंढते हुए कृष्ण को। गए तो उन्होंने देखा कि क्या अंदर से आवाजें आ रही हैं, तो देखा कि ये दो आवाजें आ रही हैं। तो ये सोचने लगे कि क्या जाओ नहीं जाओ। फिर उन्होंने चेक किया क्या हो रहा है अंदर, तो देखा कि वहाँ कृष्ण और अर्जुन सोए हुए हैं और दोनों को फैन कौन कर रही है? रुक्मिणी देवी दोनों को फैनिंग कर रही है उनके बेड में। और वहाँ कृष्ण के चरण कमल अर्जुन के छाती में है और अर्जुन के चरण कमल कृष्ण के छाती में है। तो इस प्रकार से भगवान भी अत्यधिक आनंद की अनुभूति करते हैं जब वो अपने भक्तों के नामों का उच्चारण करते हैं। उनके सांस में भक्तों का नाम है कृष्ण के। जिस प्रकार हमें कहा जाता है कि हर सांस में क्या होना चाहिए?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
एक्चुअली भगवान को कोई सुख दे सकता है, भगवान को सुख की आवश्यकता नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए भगवान को आत्मा राम कहा जाता है। वो अपने में ही रमन करते हैं इसलिए राधा रमन है। तो ऐसे भगवान भी सुख की अनुभूति करते हैं केवल अपने भक्तों के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो संग है उनको सबसे अच्छा लगता था। महाप्रभु के जीवन में महाप्रभु को सबसे सुख देने वाली वस्तु, सबसे सुखदायक कोई चीज थी तो वो रामानंद राय थे। तो रामानंद राय कोई सर्वसाधारण भक्त नहीं है। तो रामानंद राय कृष्ण कहते कि उनके ये पांच भाई हुआ करते थे रामानंद वाणीनाथ आदि। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ जगन्नाथपुरी में आए और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी भी तो जगन्नाथपुरी आया हूँ, अभी तो मुझे दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जाना है। और क्यों चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले थे? अपने जो बड़े भाई हैं, क्या उनके बड़े भाई का नाम था? विश्वरूप। क्या था? अब चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? विश्वंभर। कन्फ्यूजन रहता है भक्तों को एग्जैक्टली कौन क्या है। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है वो मिला नहीं हूँ, मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ, एक बार मिलना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु अकेले दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं और निकलने से पहले वो परमिशन लेते हैं जगन्नाथ का और सारे डिवोटीज का, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं और वो कहते कि प्लीज हाँ मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय बहुत रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप अभी अभी मत जाइए और दो दिन रहिए हमारे घर, मैं आप ठीक से प्रसाद खिलाऊंगा। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु चले जाए उनसे दूर। तो लेकिन महाप्रभु दो दिन रुके, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कई सारे व्यंजन बनाए, महाप्रभु ने खाए और उन्होंने उनको नए वस्त्र दिए, उपनादि बहिर्वास वो वस्त्र दिए है। और उन्होंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद भी दो, मैं यह लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल होगी। सफल हो तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप यात्रा में जा रहे हो तो वहां जाओगे तो दक्षिण भारत में एक भक्त मिलेंगे जिनका नाम क्या है, रामानंद राय। आप चाहे जहां मर्जी घूमो लेकिन रामानंद राय से मिले बिना आप वापस नहीं आना, क्योंकि उनके जैसा वैष्णव त्रिभुवन में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य की बात को सीरियसली लिया। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि भक्ति शास्त्र रस शास्त्र का जो तत्व वेता है, कृष्ण कथा से जो भरे हुए हैं, वो रामानंद राय है। आप यात्रा में जाओगे तो उनसे जरूर मिलो, वो गवर्नर है वहां, विद्यानगर के गवर्नर। चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल करते हैं कृष्णदास के साथ, अकेले भ्रमण करते करते गोदावरी के किनारे जाते हैं। आजकल उस टाउन का नाम राजमुंद्री है, बड़ा सिटी है। तो गोदावरी के किनारे चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे तो उनको याद आया कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक भक्त का नाम बोला था रामानंद राय, उनसे मिलना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया गोदावरी में, और स्नान घाट से थोड़ा दूर एक जगह बैठकर कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। तो उसी क्षण उसी समय कई सारे लोग पालकी को उठाकर ला रहे थे, आगे ब्राह्मण स्तुतियों का गान करते हुए जा रहे थे, पीछे बहुत सारे लोग रहे थे। पालकी में एक व्यक्ति बैठ के आया था और वो कौन थे, रामानंद राय गवर्नर। और वो आए थे गोदावरी में स्नान करने के लिए। जैसे आए स्नान करने के लिए, कुछ जो भी उपचार होते हैं स्नान आदि के वो सब किए उन्होंने, और फिर उनकी नजर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गई। उन्होंने कहा ऐसा तेजवान सन्यासी बैठा है जिसकी अंग कांति हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। तो उनसे रहा नहीं गया, रामानंद राय उनके पास गए और महाप्रभु ने जैसे उनको देखा, हाँ रामानंद राय को, तो चैतन्य महाप्रभु कभी मिले नहीं थे, केवल सार्वभौम भट्टाचार्य से नाम सुना था, लेकिन इन्होंने देखने मात्र से पहचान लिया कि ये कौन है, रामानंद राय है। और बल्कि इतने ऐश्वर्यमय जीवन में वो रहते थे। अब देखो जिनको पालकी में लेके जा रहे लोग, जिनके आगे पीछे स्तुतियों का गान हो रहा है, तो कितने उनकी ये होगी ऐश्वर्य या प्रधानता कितनी होगी। तो ऐसे रामानंद राय को जब महाप्रभु ने देखा, तुरंत उनका आलिंगन किया, मिले और एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे। तो ये जो बाकी जो ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण और लोग, उन्होंने सोचा ये क्या होगा, इस सन्यासी को ऐसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए खतरा है। तो फिर दोनों समझ गए कि ये लोग इन लोगों को गलत भावना से सोच रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, हाँ दूर हुए और उन्होंने कहा कि आप रामानंद राय हैं। महाप्रभु ने कहा हाँ, कहते कि आपको मिलने के लिए तो मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था, और मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, इधर ही रुकना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा आपके मुख से कृष्ण का गुणगान सुनना चाहता हूँ। तो रामानंद राय बहुत विनम्र थे, बल्कि भौतिक रूप से बड़े भौतिक कार्यों में मग्न थे, लेकिन उनका हृदय किसके लिए था, कृष्ण के लिए। वो तो मगरमच्छ और बंदर का स्टोरी सुनते ना, कलेजा वाला, तो वही है भक्तों के लिए ये शिक्षा है कि अपना हृदय किसको रखे, कृष्ण के लिए, बाकी सबसे व्यवहार करें लेकिन अपना हृदय किसको ना दे। ये सीक्रेट है। तो हृदय कृष्ण के लिए है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो वैसे रामानंद राय में भी गवर्नमेंट के कार्यों में राजा के अंडर सेवाएं कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय सदैव कृष्ण के लिए था और कृष्ण कथा से भरा हुआ था। तो ऐसे महाप्रभु जब उनको मिले और उन्होंने कहा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय ने कहा कि मैं तो नेच हूँ, शूद्र, और मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आप वास्तव में साक्षात कृष्ण हो, ऐसे एक दूसरे का गुणगान कर रहे थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु उनके पास बैठे 8 दिन के लिए और उनसे कृष्ण कथा सुनी। तो जो हम PhD की बात करते चैतन्य चरितामृत में, कहते कि नहीं PhD स्टडी है। तो PhD स्टडी क्या है, जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, वो चैतन्य चरितामृत का क्या है, PhD है। जो डिस्कशन इन दोनों का कन्वर्सेशन है, उन्होंने जो चर्चाएं की हैं, वो भौतिक जो भौतिक तवादी हमारे जैसे जो जीव है इनके अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। महाप्रभु यहाँ तक पूछने लगे, उन्होंने कई प्रश्न पूछे, 8 या 10 प्रश्न पूछे, तो उनमें से कई प्रश्न है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा दुख क्या है रामानंद राय, बताओ इस संसार में। तो रामानंद राय ने कहा, प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से दूर हो जाना, उनका संग लाभ नहीं होना। तो महाप्रभु ने पूछा, आगे बताओ कि सबसे बड़ा फेम या यश क्या है। तो रामानंद राय ने कहा, कृष्ण का अनन्य भक्त बनना, इससे बढ़कर फेम हो या प्रसिद्धि या फेम यश और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई प्रश्न पूछे, हाँ, किसके बारे में, बेस्ट हियरिंग क्या है, बेस्ट कीर्तन आदि क्या है, तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछे। तो रामानंद राय सटीक उत्तर देते थे, चैतन्य महाप्रभु का हृदय संतुष्ट हो जाता था और दिन रात ये दोनों श्रवण करते जा रहे थे और महाप्रभु एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे थे, रामानंद राय बोलते जा रहे थे। रामानंद राय ने कहा कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, तुम ही मेरे मुखारवन से वक्ता श्री चैतन्य, आप ही एक वक्ता हो जो मुझे मेरे द्वारा बोल रहे हो। तो ऐसे रामानंद राय ने कई प्रश्न महाप्रभु ने पूछे, सब प्रकार के जो रस तत्व हैं, सब प्रकार के भाव आदि का वर्णन है और महाप्रभु संतुष्ट नहीं हो रहे थे। महाप्रभु हमेशा कहते थे, आगे कहो, इससे भी परे और डिटेल सुनना चाहता हूँ। जब ऐसा करते करते रामानंद राय के हृदय से कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन, ब्रज का वर्णन निकलने लगा, तो यहाँ तक निकला कि रामानंद राय के मुख में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हाथ लगाया, बस अभी मुझे कान टॉलरेट। महाप्रभु ने कहा कि ये इतना अद्भुत वर्णन है कि मैं अपने भावों को नहीं रोक सकता, रामानंद राय आपके मुख को थोड़ी देर के लिए करो। हाँ, महाप्रभु ने हाथ लगाया, दिव्य उन्नत चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से महाप्रभु रामानंद राय से इतने घनिष्ठ हो गए थे। महाप्रभु ने कहा, रामानंद राय आप क्या करो, मेरे साथ चलो, हम दोनों जगन्नाथपुरी रहेंगे, ये सब गवर्नमेंट का वर्क वगैरह सब छोड़ो, हम दोनों क्या करेंगे, कृष्ण कथा रंगे, केवल जगन्नाथपुरी में रहकर कृष्ण कथा में ही आनंद प्राप्त करेंगे, दिन रात कृष्ण का वर्णन करेंगे। तो रामानंद राय ने कहा हाँ। तो राजा प्रताप रुद्र के द्वारा बाद में रामानंद राय को ये मिलता है, छुट्टी मिलता है परमानेंटली। तो चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर में मिले और वहां से आगे मुंबई की ओर चले गए। और फिर जब वापस आए चैतन्य महाप्रभु पुरी के लिए, तो फिर से रामानंद राय के पास गए, फिर से मिले और कहा, आप आ रहे हो ना, हाँ, हमें रहना है जगन्नाथपुरी में और वहां क्या करना है, कृष्ण कथा रंगे, कृष्ण कथा में मग्न रहना है। तो रामानंद राय फिर फाइनली राजा प्रताप रुद्र को पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये डिजायर है। रामानंद राय को राजा कहते, तुम तो कितने भाग्यशाली हो, हाँ, तुम छुट्टी कर लो, मैं तुम्हारा आजीवन पेंशन भी दूंगा, सैलरी और पेंशन सारी चीजें दूंगा, हाँ, तुम महाप्रभु के संग में रहो। तो रामानंद राय सब चीजों को छोड़कर, रामानंद राय का ये जन्म स्थली है, हाँ, ये जो स्थान है बेंटापुर, तो रामानंद राय सब चीजों को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के संग में निवास करते हैं। तो ऐसे रामानंद राय के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कथा वर्णन या रस तत्व इन चीजों को स्थापित किया था। तो ऐसे रामानंद राय जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का बर्थ प्लेस है, उसके पास एक स्थान है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। जगन्नाथ को, वल्लभ का मतलब होता है प्रिय, जो जगन्नाथ को बहुत प्रिय है, गार्डन बगीचा, वहाँ रामानंद राय रहा करते थे। और रामानंद राय ने एक ग्रंथ की रचना की थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है जिनमें संस्कृत में, तो वो उसके ऊपर ड्रामास प्रिपेयर करते थे रामानंद राय। तो रामानंद राय ड्रामास के लिए जो देवदासियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको प्रिपेयर करते थे। तो एक दिन जो प्रद्युम्न मिश्रा है, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, मैं उस दिन भी कह रहा था, और प्रद्युम्न मिश्रा कहते हैं कि हे महाप्रभु, मेरे हृदय में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा जागृत हो गई है, बहुत लालायित हो रहा हूँ मैं, आपको सुनाओ। तो महाप्रभु ने कहा, आमे कृष्ण कथा नाही जानी, देखो मैं तो कृष्ण कथा जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन कृष्ण कथा जानता है, रामानंद राय, एक ही व्यक्ति। तो महाप्रभु कहते, प्रद्युम्न मिश्र तुम क्या करो, रामानंद राय के पास जाओ और उनसे कृष्ण कथा को सुनो, उनको बोलो कि मैंने भेजा है। तो रामानंद राय के पास उनके ग्लोरीज को महाप्रभु बताना चाह रहे थे कि कितने पावरफुल हैं रामानंद राय। तो ये प्रद्युम्न मिश्र गए रामानंद राय के वहां जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, उनके ऑफिस में, ऑफिस नहीं कह सकते लेकिन स्थान में तो उनका सेवक वहां था। तो प्रद्युम्न मिश्र ने पूछा कि रामानंद राय कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी गार्डन में है अंदर, हाँ जो देवदासियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनको तेल आदि से मालिश कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। तो ये सुन के उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे कृष्ण कथा सुनूंगा, हाँ ये तो उचित नहीं है। तो प्रद्युम्न मिश्र के हृदय में तुरंत ही इस प्रकार के ये आए भावना कि नहीं ये अनुचित व्यक्ति है। तो वो रामानंद राय फिर थोड़ी देर में इन्होंने वेट किया तो रामानंद राय आए और उन्होंने कहा बताइए बताइए आप क्यों आए हैं। तो इन्होंने सही कारण नहीं बताया, जिस राय से आपका दर्शन करने के लिए आया था और अभी मैं जा रहा हूँ। तो ये गए और महाप्रभु के पास गए कि आपने कहा मुझे भेजा कृष्ण कथा सुनने के लिए। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी होकर भी जो काट काट मतलब लकड़ से बनी हुई स्त्री है उसको मेरे अंगूठे का स्पर्श हो जाता है तभी भी मैं विचलित हो जाता हूँ। महाप्रभु ने कहा लेकिन रामानंद राय का मन इतना शुद्ध है कि वो परे है इन चीजों से। तो महाप्रभु ने कहा कि तुमने गलती की है, वो तो हो चाहे उन यंग गर्ल्स को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उनका स्पर्श तो ऐसे है कि किसी पत्थर या लकड़ को हाथ लगा रहे हैं। तो रामानंद राय की इतनी बड़ी महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को फिर से भेजा और प्रद्युम्न मिश्र गए और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ। तो रामानंद राय ने कहा क्या सुनना चाहते हो। तो उन्होंने कहा जो चीज अपने चैतन्य महाप्रभु को वर्णन की थी, कहा विद्यानगर ने, विद्यानगर में, वो सुनना चाहता हूँ। तो फिर रामानंद राय ने पूरा दिन कृष्ण कथा तो वर्णन किया। तो प्रद्युम्न मिश्र और सोच नहीं पाए कि कैसे समय गुजर गया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, रामानंद राय का गुणगान करते हैं। और वास्तव में रामानंद राय जैसा प्रमुख आचार्य या प्रमुख ऐसा जो वैष्णव है ऐसे नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कृष्ण कथा वही वर्णन कर सकता है जो शुकदेव गोस्वामी की कैलिबर का हो, शुकदेव गोस्वामी की योग्यता रखता हूँ। क्यों शुकदेव गोस्वामी को भागवतम बोलने के लिए चूज किया था, क्यों किया था? तो वर्णन आता है व्यास देव ने जब लेक्चर देने से पहले कहा शुकदेव तुम भागवतम आप ट्रेन करने से पहले उन्होंने कहा तुम अपने मन और इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए जनक महाराज के पास जाओ। तो जो शुकदेव गोस्वामी है उनको जनक के पास भेजते हैं, जनक तो राजा है एक गृहस्थ है, उनके पास भेजते हैं। शुकदेव गोस्वामी जाते हैं जनक महाराज के पास, तो जनक महाराज अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते। शुकदेव गोस्वामी 3 दिन बाहर दरवाजे में बैठे रहते हैं, कोई स्वागत नहीं कुछ नहीं। 3 दिन के बाद जब दरवाजा खोला तब उनको माला पहनाई और अंदर ले गए। उन्होंने कहा क्यों आए हो मेरे पास, जनक महाराज ने पूछा कि मेरे पिता व्यास देव ने मुझे भेजा है आपके द्वारा ट्रेनिंग लेने के लिए कि किस प्रकार से मन और इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। तो जनक महाराज का तो इतना बड़ा महल था, सब जगह ऐश्वर्य भरा हुआ था। तो उन्होंने उनकी टेस्ट लेना शुरू किया, किसका? शुकदेव गोस्वामी का। तो जनक महाराज ने शुगर लाए, शुगर होता है ना शुगर, और शुकदेव गोस्वामी को कहा अपनी जीभ बाहर निकालो और शुगर को लेकर जो ठेला होता है ना, ठेला नहीं क्या कहते, स्क्वायर होता है शुगर का क्यूब, वो रखा जीभ पर, जीभ पर रखा। तो शुकदेव गोस्वामी के जिह्वा से कुछ भी जैसे आप रखो तो क्या निकलने लगेगा, लार या पानी ना, हाँ तो मतलब कान कंट्रोल। तो शुकदेव गोस्वामी के जिह्वा में रखा ऐसे कि जैसे कि पत्थर है, कोई और प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। जनक महाराज बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा तो अमेजिंग है। फिर उनको क्या किया, शुकदेव गोस्वामी को एक ग्लास पकड़ाया जिसमें पूरा ऊपर तक फुल था, मतलब थोड़ा से हाथ में पकड़ो एक स्टेप डालो तो गिर जाएगा, और कहा कि आप इस ग्लास को पकड़ो और ले जाओ और एक परिक्रमा करो मेरे महल की। और सारे महल के इर्द गिर्द क्या है, बहुत सारी सुंदरियां और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनको देखने मात्र से हिल जाए, कंपन आ जाए। तो शुकदेव गोस्वामी उन सब स्त्रियों के बीच आधे में से चलते हुए गए और इस प्रकार से कि वापस आ गए तो जनक महाराज ने देखा कि एक वो जो लेयर है दूध बिल्कुल ऊपर था, हिला नहीं तो गिरना दूर है। तो जनक महाराज ने लेटर लिखा व्यासदेव को, ये क्वालिफाइड है किस चीज के लिए? कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए। वास्तव में कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए बहुत बड़े योग्यता की आवश्यकता है, लेकिन हम इसलिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें कृष्ण कथा का आश्रय लेना चाहिए, और जब उसको दोहराते रहते हैं तो हम शुद्ध होने लगते हैं। तो इस प्रकार से रामानंद राय का हम ग्लोरीज हैं। चैतन्य चरितामृत में कई अध्यायों में रामानंद राय का वर्णन आता है, शिक्षाओं का वर्णन आता है। तो ऐसे रामानंद राय का ये लीला स्थली है। तो रामानंद राय ने यूज़ किए हुए कुछ वस्तुएँ या अवेलेबल हैं जिनको हम दर्शन कर सकते हैं। उनका पेन है जिसके द्वारा वो लिखते थे, तालपत्र आदि हैं। हाँ, श्रील रामानंद राय के, चैतन्य महाप्रभु के, श्रील प्रभुपाद के, हिताय गौर प्रेमानंद। हम सब जाएंगे वहाँ दर्शन के लिए, तो आप कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं यहाँ की सेवा के लिए। हरे कृष्णा। खड़े हो जाइए, मुझे पता है आप सब लोग थके हैं, लेकिन